एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी संस्था की पड़ताल कर रहे हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोगों का वास्ता कभी ना कभी पड़ा है या शायद पड़ेगा, मतलब विश्वविद्यालय।
हाँ नमस्ते। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सबकी अपनी राय है, अपनी अपनी उम्मीदें हैं।
बिल्कुल।
और आज हम डेविड पेल्फ्रेमैन और पॉल टेम्पल की किताब यूनिवर्सिटीज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, यानी विश्वविद्यालय एक संक्षिप्त परिचय, इसके आईने में इसे देखने की कोशिश करेंगे।
हाँ, ये किताब हमें इस काफी जटिल दुनिया के अंदर ले जाती है।
और ये विषय आज इतना जरूरी क्यों है, हम लगातार सुन रहे हैं ना?
हाँ बिल्कुल। विश्वविद्यालयों पर दबाव है कि वो नौकरियां पैदा करने वाले कोर्स चलाएं, पर साथ ही ज्ञान की खोज भी जारी रखें
और समाज की सेवा भी करें
और दुनिया भर में अपनी रैंकिंग भी सुधारें। हाँ, मतलब लगता है जैसे उनसे हर भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है।
सही कहा। और ऊपर से शिक्षा महंगी हो रही है, सरकार से पैसा मतलब फंडिंग वो कम हो रही है,
वैश्विक कंपटीशन तेज है।
बिल्कुल। तो ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि आज के दौर में एक विश्वविद्यालय का असल मकसद क्या है, मतलब उसकी बुनियादी भूमिका क्या होनी चाहिए और वो कौन से लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहा है। ये किताब इन्हीं सवालों के पर्ते खोलती है और दिखाती है कि कैसे विश्वविद्यालय इन अलग अलग खिंचावों के बीच अपना रास्ता तलाश रहे हैं।
अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने में जो लेखक हमारी मदद कर रहे हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। डेविड पेल्फ्रेमैन और पॉल टेम्पल दोनों ही इस विषय के गहरे जानकार हैं, लेकिन आपने कहा उनके नज़रिए थोड़े अलग हैं।
हाँ बिल्कुल। डेविड पेल्फ्रेमैन का अनुभव बहुत जमीनी है, मतलब प्रैक्टिकल। वो ऑक्सफोर्ड के न्यू कॉलेज के बर्सेयर यानी कोषाध्यक्ष रहे हैं।
ओह अच्छा।
और ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हायर एजुकेशन पॉलिसी स्टडीज, जिसे ऑक्सकैप्स कहते हैं, उसके निदेशक भी। यह सेंटर विश्वविद्यालयों से जुड़ी नीतियों पर रिसर्च और एनालिसिस करता है।
तो मतलब पेल्फ्रेमैन विश्वविद्यालयों के रोजमर्रा के कामकाज, उनके फाइनेंस मैनेजमेंट की चुनौतियों को बिल्कुल अंदर से समझते हैं।
हाँ, उनका नजरिया बहुत ही व्यवहारिक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस पर फोकस है।
और दूसरी तरफ है पॉल टेम्पल।
हाँ, पॉल टेम्पल वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उच्च शिक्षा प्रबंधन के एकेडमिक शोधकर्ता रहे हैं। उनका काम विश्वविद्यालयों की व्यवस्था, उनकी संरचना, नीतियाँ और अलग अलग देशों में वो कैसे काम करते हैं, इसके विश्लेषण पर ज्यादा केंद्रित रहा है।
तो उनका दृष्टिकोण थोड़ा ज्यादा सैद्धांतिक स्ट्रक्चरल किस्म का हुआ।
सही, आप कह सकती हैं कि ज्यादा एकेडमिक और तुलनात्मक। और यही मेल, मतलब इन दोनों का साथ आना, इस किताब को खास बनाता है।
कैसे?
एक तरफ प्रैक्टिकल अनुभव फाइनेंस और मैनेजमेंट का, दूसरी तरफ अकादमिक विश्लेषण नीतियों का। ये हमें विश्वविद्यालयों को सिर्फ एक आदर्शवादी संस्था या सिर्फ सरकारी नीतियों के पुलिंदे के तौर पर देखने से बचाता है।
अच्छा।
बल्कि एक जीते जागते, जटिल और हाँ कभी कभी थोड़े अस्त व्यस्त संगठन के रूप में समझने में मदद करता है। एक ऐसा संगठन जो अपनी भूमिका और लक्ष्यों को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रहा है।
ये दिलचस्प है। अच्छा, तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में और किन लोगों को इसे पढ़ना चाहिए?
देखिए, ये असल में विश्वविद्यालयों की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन, मतलब एक कॉम्पैक्ट गाइड है।
चाहे वो छात्र हों या उनके पेरेंट्स, शिक्षक हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों या फिर वो लोग जो नीतियां बनाते हैं, सबके लिए है ये।
बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि आज का विश्वविद्यालय एक बेहद जटिल और विरोधाभासों से भरी संस्था है। वो फंसा हुआ है।
किस चीज में फंसा हुआ है?
अपनी ऐतिहासिक जड़ों, मतलब ज्ञान की खोज के आदर्शों, और दूसरी तरफ 21वीं सदी की व्यावहारिक, अक्सर बाजार केंद्रित मांगों के बीच।
हाँ, ये तो दिखता है।
तो उसे आप न तो पूरी तरह ज्ञान का मंदिर कह सकते हैं, न ही पूरी तरह नौकरी दिलाने वाली फैक्ट्री। उसकी असली पहचान, उसका रोल, उसका गोल, वो इन अलग अलग भूमिकाओं और लक्ष्यों के बीच संतुलन साधने के लगातार प्रयास में है।
किताब हमें इतिहास में भी ले जाती है, कैसे मध्ययुगीन यूरोप में वो विद्वानों के संघ के रूप में उभरे।
हाँ,
फिर कैसे 19वीं सदी में जर्मनी में शोध केंद्रित बने,
हम्बोल्टियन मॉडल जिसे कहते हैं।
हाँ, और आज तो ये अरबों डॉलर के वैश्विक उद्यम बन गए हैं। ये दिखाती है किताब के अकादमिक आजादी या पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या हो या ऑटोनॉमी, इन पर आज जो बहसें होती हैं
वो नई नहीं है।
हाँ वही, सदियों पुरानी कश्मकश की ये नई शक्लें।
ये एक तरह से विश्वविद्यालय की भूमिका की कहानी है। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ इतिहास बताकर नहीं रुकती, वो आज के विश्वविद्यालयों के जो मुख्य हिस्से हैं, जैसे शिक्षक, छात्र, उनका शासन तंत्र और उनके पैसे के स्रोत यानी फंडिंग, उनका विश्लेषण करती है। ये मासिफिकेशन यानी छात्रों की संख्या में जो भारी बढ़ोतरी हुई है,
हाँ, एक्सेस बढ़ाया,
और मार्केटाइजेशन यानी शिक्षा में बाजार के नियमों का बढ़ता दखल, इन बड़े बदलावों पर गौर करती है और बताती है कि कैसे ये ट्रेंड्स विश्वविद्यालयों के मूल चरित्र, उनकी भूमिका और उनके लक्ष्यों को बदल रहे हैं।
चलिए अब किताब के कुछ मुख्य हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला अध्याय ही पूछता है विश्वविद्यालय क्या है।
हाँ, और जवाब तुरंत मिलता है कि भाई इसका कोई एक मॉडल नहीं है। ये ज्ञान की खोज का आइवरी टावर भी समझा जाता है, तो पेशेवरों को ट्रेनिंग देने की जगह भी,
और कहीं कहीं आर्थिक विकास का इंजन भी,
बिल्कुल, और कहीं समाज की आलोचना करने वाला मंच भी। किताब अलग अलग मॉडल्स का जिक्र करती है, जैसे जर्मनी का हम्बोल्टियन मॉडल,
शोध और शिक्षण साथ साथ,
हाँ, फिर ऑक्सब्रिज मॉडल जो छात्र के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देता है, और अमेरिकी लैंड ग्रांट मॉडल जो जनसेवा और प्रैक्टिकल ज्ञान पर फोकस करता है।
और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने पहले भी कहा, कि आज का विश्वविद्यालय इन सब का मिश्रण है, एक हाइब्रिड मॉडल।
एग्जैक्टली, वो एक ही समय में कई भूमिकाएं निभाने की कोशिश कर रहा है, कई लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी ताकत भी है और चुनौती भी,
और इतिहास भी यही दिखाता है ना। मध्य युग में चर्च और राज्य से आजाद संस्था बनने से लेकर 19वीं सदी में रिसर्च सेंटर बनने तक,
और फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद आम लोगों तक शिक्षा पहुंचाने यानी मैसिफिकेशन तक।
हाँ, विश्वविद्यालय हमेशा बदलते रहे हैं, उनकी भूमिका समाज की जरूरतों के साथ विकसित हुई है।
अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो असल में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाते हैं, शिक्षक यानी अकेडमिक्स।
हाँ, और छात्र भी,
बिल्कुल। पहले अकेडमिक्स की बात करते हैं। किताब अकेडमिक जीवन की धुरी, शिक्षण और शोध के बीच के तनाव पर बात करती है।
ये तो क्लासिक डिबेट है।
हाँ, और अकेडमिक स्वतंत्रता क्यों जरूरी है इस पर जोर देती है, लेकिन साथ ही उस पर जो दबाव बढ़ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या फंडिंग से जुड़े, उनका भी जिक्र करती है।
हाँ, और वो पब्लिश और पेरिश वाली संस्कृति का दबाव, मतलब अकादमिकों पर लगातार रिसर्च पेपर छापने का जो प्रेशर रहता है,
ओह, वो तो बहुत ज्यादा है।
इसका शिक्षण की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है? शोध और पढ़ाने के बीच समय का संतुलन कैसे बने? ये सवाल सीधे तौर पर इस बात से जुड़े हैं कि एक शिक्षक अपनी भूमिका को कैसे देखता है और विश्वविद्यालय उनसे क्या उम्मीद रखता है, उनके लक्ष्य क्या सेट करता है।
बिल्कुल, और फिर छात्र, उनकी भूमिका भी तो कितनी बदल गई है।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है।
पहले वो ज्ञान परंपरा में सीखने वाले प्रशिक्षु या शिष्य जैसे थे, फिर आया मासिफिकेशन जिसने उन्हें बहुत विविध बना दिया, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग,
और अब
मार्केटाइजेशन उन्हें ग्राहक या उपभोक्ता के तौर पे देख रहा है।
इसके अपने फायदे नुकसान हैं। जैसा आपने कहा, ग्राहक समझने से शायद संस्थाएं ज्यादा जवाबदेह बनती हैं, छात्रों की सुनती हैं।
हाँ, शायद।
लेकिन क्या इससे शिक्षा एक खरीदी बेची जाने वाली चीज नहीं बन जाती, एक कमोडिटी?
यही तो सवाल है।
क्या इससे ग्रेड बढ़ जाते हैं, कोर्स सतही हो जाते हैं, बढ़ती फीस, स्टूडेंट लोन, ये सब इसी बदलाव से जुड़े मुद्दे हैं?
हाँ, और ये फिर उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है, शिक्षा का आखिर लक्ष्य क्या है, उसका रोल क्या है, सिर्फ नौकरी पाना ये एक बेहतर, ज्यादा जागरूक नागरिक बनना भी।
और इन सबको चलाने की व्यवस्था, मतलब गवर्नेंस, वो भी कम जटिल नहीं है।
अरे बिल्कुल नहीं। विश्वविद्यालय का इंचार्ज कौन है? किताब पारंपरिक कॉलेजियल मॉडल, जहां शिक्षक मिलकर समितियों के जरिए फैसले लेते थे।
हाँ, फैकल्टी ड्रिवन।
और आजकल बढ़ते मैनेजरियलिज्म, जहां कॉर्पोरेट स्टाइल में सीईओ टाइप लीडरशिप फैसले लेती है, उसके बीच का तनाव दिखाती है।
इसमें तो बहुत सारे हितधारक हैं, फैकल्टी, छात्र, प्रशासक, बोर्ड, सरकार, इंडस्ट्री।
सही कहा, और उनके बीच शक्ति संतुलन साधना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रभावी शासन के लिए अकादमिक मूल्यों और कुशल प्रबंधन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, जो मुश्किल होता जा रहा है।
और पैसा, फंडिंग, वो कहां से आता है?
किताब बताती है कि पारंपरिक रूप से सरकारी अनुदान, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स, एक बड़ा स्रोत रहा है, लेकिन अब दुनिया भर में ये कम हो रहा है।
हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं।
इसलिए विश्वविद्यालय अब ट्यूशन फीस पर, रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट्स पर, डोनेशंस पर या अपनी कोई व्यावसायिक गतिविधि से पैसा कमाने पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं।
इसका सीधा असर पड़ता होगा फिर।
बिल्कुल। कि कौन से कोर्स ज़्यादा चलाए जाएंगे, क्या फ़ायदेमंद प्रोफेशनल डिग्री को मानविकी या बेसिक साइंस जैसे विषयों पर तरजीह मिलेगी, कौन पढ़ पाएगा, क्या शिक्षा सिर्फ अमीरों तक सीमित हो जाएगी
और संस्था की अपनी सोच, अपनी दिशा तय करने की कितनी आज़ादी बचेगी।
एग्जैक्टली। फंडिंग का सवाल सीधे सीधे विश्वविद्यालय के मिशन, उसकी सामाजिक भूमिका, उसके लक्ष्यों से जुड़ जाता है।
और फिर आता है क्वालिटी और रैंकिंग का मुद्दा। जब इतना पैसा लग रहा है, इतनी उम्मीदें हैं, तो क्वालिटी कैसे नापी जाए?
हाँ, यहीं पर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसियां, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और वो जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स है वो आ जाती हैं।
किताब मानती है कि इनसे पारदर्शिता बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी आती है।
हाँ, लेकिन आगाह भी करती है। वो बताती है कि रैंकिंग्स के दौड़ में संस्थान अपनी खासियत खोकर एक जैसे बनने लग सकते हैं। उत्कृष्टता की एक संकरी परिभाषा हावी हो सकती है और कई बार संस्थान सिर्फ रैंकिंग सुधारने के लिए सिस्टम को गेम करने लगते हैं, मतलब सिर्फ मेट्रिक्स पर फोकस करते हैं, असल सुधार पर ध्यान कम हो जाता है।
ये तो चिंता की बात है। आखिर में किताब भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं पर बात करती है।
हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग जैसे MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज,
हाँ आजकल बहुत चल रहे हैं,
उनका क्या असर होगा? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का आना जाना या फिर वैश्विक समस्याएं जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटने में विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होगी? और सरकारों का बढ़ता दखल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का खतरा, ये सब भविष्य की दिशा तय करेंगे।
लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण है?
हाँ, एक सतर्क आशावाद है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद विश्वविद्यालय समाज के लिए जरूरी बने रहेंगे, उनका रोल महत्वपूर्ण रहेगा।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ खास बातें उभर कर आती हैं, है ना? कुछ मुख्य संदेश।
हाँ बिल्कुल। पहला तो यही कि विश्वविद्यालय हमेशा परंपरा और आधुनिकता के बीच झूलते रहते हैं। वो जो ज्ञान की खोज का आदर्श है और जो बाजार की मांग है, इन दोनों के बीच संतुलन साधना उनकी नियति है। उनका कोर रोल इसी टेंशन में है।
भारत में भी हम ये देखते हैं, एक तरफ IITs, IIMs जैसे प्रोफेशनल संस्थान हैं, उनका एक खास लक्ष्य है, दूसरी तरफ पारंपरिक कला मानविकी के विभाग है, उनका लक्ष्य अलग है। दोनों की अपनी जगह पर तलाव बना रहता है।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात यह कि विश्वविद्यालय एक हाइब्रिड यानी मिलाजुला संगठन है। वो एक ही साथ कई पहचाने रखता है, विद्वानों का समूह भी है, एक बिजनेस भी, सरकार की एजेंसी भी और बाजार का खिलाड़ी भी।
और उसकी ज्यादातर मुश्किलें इन्हीं अलग अलग भूमिकाओं और लक्ष्यों के टकराव से पैदा होती हैं। उसे किसी एक खांचे में फिट करना मुश्किल है।
सही। तीसरा, मैसिफिकेशन और मार्केटाइजेशन ने सब कुछ बदल दिया है। ये बहुत बड़े बदलाव हैं। छात्रों का ग्राहक बनना, शिक्षा का एक उत्पाद की तरह देखा जाना।
इससे जवाबदेही बढ़ी है, ये सच है।
हाँ वो तो है, पर ज्ञान के सिर्फ एक बिकाऊ चीज बन जाने का खतरा भी है। हमारे आसपास खुलते प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, उनकी मार्केटिंग, फीस, ये सब इसी ट्रेंड का हिस्सा है। उनका फोकस, उनका लक्ष्य साफ तौर पर मार्केट ड्रिवन लगता है कई बार।
चौथा, पैसे और आजादी का संकट गहरा रहा है। सरकारी मदद कम होने से विश्वविद्यालयों को पैसे के लिए दूसरी तरफ देखना पड़ रहा है।
और इससे ये सवाल उठता है कि क्या वो अपनी अकादमिक स्वतंत्रता, अपनी स्वायत्तता बनाए रख पाएंगे? क्या वो समाज के लिए जरूरी मगर शायद कम फायदेमंद शोध और शिक्षण जारी रख पाएंगे? भारत में भी सरकारी विश्वविद्यालयों की फंडिंग की समस्या लगातार खबरों में रहती है।
हाँ ये तो है।
और पांचवा, ग्लोबल बनने की होड़ और रैंकिंग का दबाव। हर कोई वर्ल्ड क्लास बनना चाहता है,
लेकिन क्या इस दौड़ में विश्वविद्यालय अपनी स्थानीय जरूरतों और अपनी अनूठी पहचान को खो रहे हैं? क्या उत्कृष्टता का मतलब सिर्फ वही है जो रैंकिंग एजेंसियां मानती हैं?
यही सवाल है। भारत में भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसी योजनाएं हैं, ये इसी वैश्विक दौड़ का हिस्सा हैं। इनके अपने फायदे हैं पर कुछ चिंताएं भी हैं कि कहीं हम अपनी जड़ों से ना कट जाएं।
अच्छा, इस किताब में कुछ विचार ऐसे भी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, अगर हम कुछ मुख्य विचारों को देखें।
हाँ कई हैं, जैसे एक विचार ये है कि आधुनिक विश्वविद्यालय से उम्मीद की जाती है कि वो सबके लिए सब कुछ हो।
हाँ ये आपने पहले कहा था।
अर्थव्यवस्था चलाए, संस्कृति बचाए, प्रोफेशनल तैयार करे और बिना किसी दबाव के ज्ञान की खोज भी करें। उसकी असली चुनौती इनमें से कोई एक काम करना नहीं, बल्कि ये सारे काम एक साथ करने की कोशिश में टिके रहना है। ये उसकी मल्टीफंक्शनल विरोधाभासी भूमिका और लक्ष्यों को दिखाता है।
एक और दमदार विचार छात्र की बदलती भूमिका पर था, छात्र का ज्ञान साधक से ग्राहक बनना। आपने कहा ये शायद आधुनिक उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा बदलाव है।
हाँ, क्योंकि ये छात्र, शिक्षक और संस्था के बीच के पूरे रिश्ते को और शिक्षा के लक्ष्य को ही मौलिक रूप से बदल देता है।
रैंकिंग की होड़ पर भी एक तीखी टिप्पणी थी कि वैश्विक रैंकिंग ने भले ही उत्कृष्टता की एक ताकतवर परिभाषा घड़ी हो, लेकिन वो परिभाषा संकीर्ण है।
और वर्ल्ड क्लास बनने की धुन में खतरा ये है कि सारे विश्वविद्यालय एक जैसे हो जाएंगे, अपनी खास पहचान, अपनी स्थानीय भूमिका, अपने विविध लक्ष्यों को भूल जाएंगे।
और अकादमिक स्वतंत्रता पर वो बात कि ये सिर्फ प्रोफेसरों का हक नहीं बल्कि समाज की जरूरत है।
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज को आगे बढ़ने के लिए स्थापित विचारों पर सवाल उठाने और सच बोलने की हिम्मत रखने वाले लोगों और संस्थाओं की जरूरत होती है। विश्वविद्यालय की ये आलोचनात्मक भूमिका, ये लक्ष्य बहुत जरूरी है।
अंत में वो विचार कि विश्वविद्यालय ऐसा मूल्य पैदा करते हैं जिसे न तो बाजार पूरी तरह माप सकता है न सरकारें जबरदस्ती बनवा सकती हैं।
हाँ, आलोचनात्मक सोच, सांस्कृतिक समझ, नई खोजें, ये चीजें शायद सीधे सीधे GDP में न दिखें पर समाज के लिए अनमोल है। ये उनके लक्ष्यों का एक अहम पर अक्सर अनदेखा हिस्सा है।
तो ये सब जानने के बाद मतलब हम जैसे आम लोग, छात्र, अभिभावक, नागरिक, उनके लिए इसके क्या मायने हैं? इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या फैसलों पर क्या असर पड़ सकता है?
देखिए, अगर कोई छात्र या अभिभावक कॉलेज चुन रहा है तो मेरा सुझाव होगा कि सिर्फ रैंकिंग या प्लेसमेंट के आंकड़े न देखें।
हाँ, ये जरूरी है।
ये समझने की कोशिश करें कि उस संस्थान का माहौल कैसा है। क्या वहाँ सिर्फ डिग्री दी जाती है या सच में सीखने सिखाने पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर है? क्या वहाँ सवाल पूछने की, बहस करने की आज़ादी है? उसका असली लक्ष्य क्या लगता है?
और छात्र खुद को सिर्फ ग्राहक न समझें।
बिल्कुल, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदार बने, सिर्फ सुविधा न खोजें, चुनौती भी स्वीकार करें।
और शिक्षकों और प्रशासकों के लिए?
उनके लिए ये किताब एक आईना है। उन्हें सोचना होगा कि क्या वो सिर्फ बाजार में चलने वाले कोर्स पर ही ध्यान दे रहे हैं या मानविकी, कला, बुनियादी विज्ञान जैसे विषयों को भी बचा रहे हैं जो शायद तुरंत पैसा ना दें पर समाज के लिए जरूरी हैं। क्या मूल्यांकन सिर्फ रिसर्च पेपर गिनकर होता है या अच्छे शिक्षण को भी महत्व दिया जाता है? प्रबंधन और शिक्षकों के बीच संवाद कितना खुला और सम्मानजनक है? ये सब सवाल संस्था की दिशा और उसके लक्ष्यों को तय करते हैं।
और नीति निर्माताओं और नागरिकों के तौर पर हमें क्या सोचना चाहिए?
हमें ये समझना होगा कि हर विश्वविद्यालय एक जैसा नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। विविधता में ही ताकत है। वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं चलेगा।
और सार्वजनिक बहस में
हमें ये याद रखना होगा कि विश्वविद्यालय सिर्फ खर्च का सौदा नहीं है, वो समाज के भविष्य के लिए एक निवेश है। अगर हम सिर्फ नौकरी दिलाने वाली शिक्षा पर ही जोर देंगे तो समाज में आलोचनात्मक सोच, नई कल्पनाएं और गहरी समझ कहाँ से आएगी? ये विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्य है।
बात तो सही है। मेरे लिए इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये है कि विश्वविद्यालय इतने लचीले और टिकाऊ शायद इसीलिए हैं क्योंकि वो विरोधाभासों से भरे हैं।
हाँ,
उनकी यही क्षमता कि वो अलग अलग, यहां तक कि विरोधी भूमिकाओं और लक्ष्यों को एक साथ साधने की कोशिश करते रहते हैं, शायद यही उन्हें हजारों सालों से प्रासंगिक बनाए हुए हैं।
ये एक अच्छा टेक अवे है और मेरे लिए मुझे लगता है यह समझना महत्वपूर्ण है कि आज की चुनौतियां अनोखी नहीं है। ये नई बोतल में पुरानी शराब जैसी हैं।
मतलब
ये ज्ञान के उद्देश्य, शिक्षा की भूमिका और समाज के साथ विश्वविद्यालय के रिश्ते पर सदियों से चली आ रही बहस का ही नया रूप है। हमें उनकी इस जटिलता को स्वीकार करना होगा। उन्हें सिर्फ ज्ञान के मंदिर या डिग्री की दुकान जैसे सरल लेबलों में बांधने से बचना होगा। उनकी जो बहुआयामी भूमिका है, जो अलग अलग लक्ष्य हैं, उनको समझना होगा।
हाँ, ये किताब एक तरह से याद दिलाती है कि इन संस्थाओं को समझने, समर्थन देने और शायद कभी कभी उनकी रक्षा करने की भी जरूरत है ताकि वो समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण काम करते रहें।
बिल्कुल, और ये सवाल तो खैर हवा में तैरता ही रहता है कि क्या भविष्य में विश्वविद्यालय अपनी पहचान, अपनी स्वायत्तता और अपने मूल्यों को इन बाजार और राजनीति के दबावों से बचा पाएंगे? या वो धीरे धीरे अपनी वो खास जगह खो देंगे जो समाज में उनकी रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। उनके भविष्य के रोल और गोल क्या होंगे?
बिल्कुल, सोचने वाला सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।